कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
ओम शांति। बाबा के यज्ञ के बहुमूल्य रत्न आदरणीय राजयोगिनी गीता बहन जी हम सभी के बीच में हैं। हम आपका एक हाथ की अव्यक्त ताली से बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय गीता बहन जी, गुजरात के सूरत से आपने बाबा का ज्ञान लिया, छोटेपन में ही अपने लौकिक माता पिता के साथ बाबा के यज्ञ में आए, सिर्फ 14 साल की उम्र में, और आपकी लौकिक प्रतिभा अति मेघावी रही। मैट्रिक, पहले तो 10वीं मैट्रिक था ना बोर्ड, उसमें समग्र गुजरात के अंदर आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया और तुरंत अपना जीवन, हाँ, आप सोचो इतनी ऊंची मेघावी प्रतिभा होते हुए भी उन्होंने निर्णय क्या लिया, तुरंत बाबा के यज्ञ के अंदर समर्पित हो गए। शुरुआत के वर्षों में आपने भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद आदि अनेक स्थानों पर सेवाएं दी। गुजराती में राजयोग शिविर कराने की शुरुआत बाबा ने आपके द्वारा कराई और आपकी इसी विशेषता के कारण भारत के कई देश राज्यों के अंदर, कई शहरों के अंदर आपका जाना हुआ। गुजरात के अंदर भावनगर और अमरेली के अंदर आपने काफी सेवा केंद्रों की स्थापना की, लगभग 10 साल तक आपने वहां पर सेवाएं दी। उसके बाद 93 से लेकर के 2010 तक ज्ञान सरोवर में आदरणीय मनोहर इंदिरा दादी जी के साथ रह करके वहां का भी सुचारू रूप से संचालन किया। आदरणीय गीता बहन जी हमारी व्यापार एवं उद्योग विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। अभी शांतिवन में रह करके आने वाले हजारों शिबिरार्थियों को, ज्ञान सरोवर में आने वाले देश विदेश के अनेक आत्माओं को और पांडव भवन में चलती ऐसी दिव्य भट्टी में आने वाले ब्राह्मण परिवार को अपनी सेवाओं से लाभान्वित करते रहते हैं। आज हम सभी के बीच में हैं, स्वस्थिति से परिस्थितियों के ऊपर विजय, आदरणीय गीता बहन जी।
ओम शांति। बाबा के सभी पुरुषार्थी भाई बहने, आप मधुबन की तपोभूमि में और तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और इस प्रकार के पुरुषार्थ के द्वारा अपनी आत्मस्थिति को और उच्च बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए आए हैं, आप सबका भी स्वागत है। संगम युग की सिद्धि ही है स्थिति बनाना। जिसको हम अवस्था बनाना कहते हैं, क्योंकि हमारी आत्म स्थिति ही वो केंद्र बिंदु है जिससे हम व्यवहार भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं और परिस्थितियों को भी प्रतिभाव देते हैं। परिस्थितियां बाहर से आती हैं, औरों से आती हैं, पर उसको रेस्पोंड, उसको जो प्रतिभाव हम देते हैं वो अपनी अंतर आत्मस्थिति से हम देते हैं। तो जितनी हमारी आत्मस्थिति ऊंची है, डिसिप्लिन्ड है, समृद्ध है, शक्तिशाली है, तो हम रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन रेस्पोंड करते हैं, योग्य प्रतिभाव देते हैं। इसलिए और ये स्थिति बनाना कोई एक दिन की बात नहीं है। जीवन भर का अभ्यास स्थिति का निर्माण करते जाते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी संगम युग की अंतिम स्टेज है, उसी से सतयुग की हम शुरुआत करते हैं। संगम की अंतिम स्थिति वो सतयुग की हमारी आदि स्थिति बनती है। हम सभी ने बाबा के सत्य ज्ञान को परख लिया है। बाबा के आदेश को, श्रीमत को भी स्वीकार किया है और समय के सिग्नल को भी हम सब ने पहचान लिया है। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, ज्ञान की सत्यता को परख लेना, बाबा के आदेश को स्वीकार कर लेना और समय के सिग्नल को समझ लेना, है ना। समय के इशारे बाबा ने सदा हमें दिए हैं और ये तीनों समझ में आने के बाद, स्वीकार करने के बाद, हम सब पुरुषार्थ मार्ग के राही बने हैं। हम पुरुषार्थी बने हैं। क्या बनना चाहते हैं, कहां तक पहुंचना चाहते हैं, ये हम सबकी बुद्धि में स्पष्ट है क्योंकि बाबा ने बताया है। नए नए तरीके से, नए नए शब्दों से बाबा ने वर्णन किया है। हम बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना चाहते हैं। हम प्रैक्टिकली माया जीत, विकर्मा जीत और कर्मातीत बनना चाहते हैं। क्योंकि समय जो महापरिवर्तन का है वो बाबा ने हमें बता दिया है। वापस घर जाना है और नई दुनिया में आना है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये सत्य है। प्रैक्टिकली ये होना है। और उसकी पूर्व तैयारी संगम युग में बाबा कराते हैं। किए हुए विकर्मों के हिसाब किताब चुकाने ही होते हैं और वही परिस्थितियां लाते हैं। जो भी मुजात्मा के सामने परिस्थिति आती है, एक तो बिना कारण नहीं आती है, बिना कारण नहीं आती है। जो परिस्थिति मेरे सामने आती है उसका मैं ही कारण हूं, ये भी समझना है ना। जब समझते हैं कि दूसरों के कारण आई है तो बात भारी लगती है, तो मुश्किल लगता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पर अब हम समझ गए हैं कि जो भी परिस्थिति मेरे सामने आती है उसका कारण हम खुद ही है। हमारा अपना कोई हिसाब किताब है, फिर प्रकृति से है, पशु पंछी से है, स्थान से है, व्यक्ति से है, कोई हिसाब बनाया है, तो वो परिस्थिति के रूप में सामने आता है। कारण हम ही हैं। और कोई कारण नहीं है ड्रामा दूषित नहीं है। कुछ ही दिनों पूर्व बाबा की मुरली सुनी, बड़ी दीदी के निमित्त थी, जिसमें बाबा ने कहा था ना कि न भगवान का दोष है न भगवती का दोष है। डॉक्टर भगवती दीदी का डॉक्टर था ना, तो कई सोचते थे कि उसने ठीक ऑपरेशन नहीं किया तो दीदी चले गए। तो बाबा ने जवाब दे दिया कि न भगवान का दोष है न भगवती का दोष है। ये हम सबको भी लागू होता है ना? तो किसी को दूषित करने की बात ही नहीं, हम खुद ही रेस्पॉन्सिबल है। हमारे द्वारा ही बीज बोए गए और उसी का फल हमारे सामने आता है, ये समझते हैं हम। बाबा ने समझाया है हम बच्चों। अंत का समय है ये भी बाबा ने कहा है। जब अंत का समय है तो रहा सहा बचा खुचा आगे पीछे का सब हिसाब क्लियर होता है। इसलिए पहले कभी ना आई हुई बातें भी सामने आती है। बाबा कहते हैं ना, अज्ञान काल में भी ऐसे संकल्प स्वप्न नहीं आए होंगे, वो ज्ञान में आने के बाद आते हैं। तो सोचते हैं कि बाबा के बनने के बाद इतनी बातें क्यों हैं? बाबा के हम अभी बने हैं ना, तो पहले का हिसाब बाबा मिटा दें, हाँ हमारा मिटा दें, फिर सबका मिटा दें, फिर तो सबका मिटा देवे ना, क्योंकि बाबा तो सबका बाबा है ना। हम ज्ञान में आए, हमने नियम मर्यादाएं अपनाई, तो कोई बाबा पर हमने उपकार तो नहीं किया ना? हमने अपने आप पर उपकार किया ना, अपने वर्तमान को सुधार दिया हमने, कि नए हिसाब हम न बनाएं, नए कोई ऐसे बीज हम ना बोएं। तो हम ऐसी अपेक्षा कैसे रख सकते हैं बाबा से कि आपके बने फिर भी बातें आती, हाँ? और ही हमें तो इतनी पालना मिल रही, बाबा का प्यार, पढ़ाई, पालना, हाँ? शक्ति वरदान, हमें तो मदद में बहुत कुछ मिल रहा है। हमें तो क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? कि कैसी भी बातें आ जाएं, हम डरने वाले नहीं हैं, हटने वाले नहीं है ना? बाबा ने हमें कोई अंधेरे में रखकर ज्ञान में नहीं लाया है। कई कहते ना, हमें क्या पता ऐसा होगा, हमें क्या पता यज्ञ में ऐसी बातें आएंगी। बाबा ने सब कुछ पहले से बता दिया, बताया है ना, कि बाबा के बने हो, जो बाप को अपना बनाते हैं तो तो दुनिया उसकी दुश्मन बनती है, माया दुश्मन बनती, विरोध विघ्न शुरू हो जाते। आज भी बाबा ने कहा विघ्न आएंगे पर परवाह नहीं करनी। बाबा ने हमें कहा है कि हरेक को माया आएगी, भाई इसको आई माया, इसको आई नहीं, आगे पीछे सबका नंबर लगता है। तो डरने की बात नहीं है। बाबा ने कहा है कि हरेक को माया आएगी, क्योंकि पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो नहीं है, तो बातें तो आएगी ना। हरेक से माया आएगी। मैं कहूं कि ये मेरी खास सहयोगी है, पता नहीं कभी भी पेपर आ सकता है। हमने सोचा ही नहीं था कि इनसे पेपर आएगा, हाँ बाबा ने कहा है आएगा। अनन्य हो, मुख्य हो, सर्विसेबल हो, पुराने हो, समर्पित हो, मधुबन निवासी हो, हरेक से माया आएगी, क्योंकि हम सब पुरुषार्थी हैं। जब तक हम मनुष्य हैं बातें आएंगी, देवता बन जाएंगे फिर नहीं आएंगे। तो क्यों का सवाल ही नहीं। बाबा कहते हैं ना, युद्ध के मैदान में खड़े होकर कोई कहे कि अरे इधर से गोली मत मारो, इधर से नहीं मारो, आप नहीं मार सकते, ऐसे कहेगा उसको तो खबरदार रहना ही होता है, कभी भी किसी तरफ से भी गोली आ सकती। कहीं भी माया आएगी, घर में रहते भी आ सकती है, नौकरी धंधे में भी आ सकती है, सेंटर में भी आ सकती है, ईश्वरीय परिवार के बीच भी आ सकती है, मधुबन में भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, अंत तक आएगी। ये भी नहीं एक बार आई तो काम पूरा हो जाएगा, अंत तक आएगी, अंतिम दांव लगाएगी। बाबा ने कहा है ना, पूरी ताकत से वार करेगी, अंत तक माया आएगी। तो माया कहो, परिस्थितियां कहो, विघ्न कहो, समस्याएं कहो, परिस्थितियां कहो, ये सारे वही चीजें हैं जिनको हमें पार करना है। पर बहुत सिंपल बात बाबा ने हम बच्चों को कही है कि माया का काम है आना और तुम्हारा काम है भगाना, शिकार नहीं बनना है, उसके प्रभाव में नहीं आना है। परिस्थितियों का काम है आना, हमारा काम है ज्ञान योग करते रहना। क्योंकि शस्त्र कहो शास्त्र कहो एक ही है, बाबा और बाबा का ज्ञान। पहले ऐसी दवाई आती थी ना कि भाई सर्व बीमारियों का एक ही रामबाण इलाज कौन सा? बाबा, बाबा का ज्ञान। बाबा ने ऐसी चीज हमें दे दी है, ऐसा सत्य हमें दे दिया है जो सभी बातों को समाप्त कर देती है। और कोई ना रास्ता है ना और कोई रिश्ता है बाबा के। इसलिए नया कुछ भी खोजना नहीं है और क्या करें और क्या करें जो बातें ना आए, कुछ और खोजना नहीं है। जो सत्य है वो बाबा ने बता दिया है। देवता बनने का एक ही चीज बाबा ने दे दी है, ज्ञान और योग। इसी ज्ञान योग से हम सब कुछ पा सकते हैं। तो बुद्धि में कभी अल्टरनेट नहीं आना चाहिए, विकल्प आते हैं ना। हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, जो कुछ हमें करना है ज्ञान योग से ही करना है। और कोई सही रास्ता नहीं है। उन रास्तों पर तो थे, वहां से यहां हम क्यों आए? वहां तो थे ना पहले। वो राइट नहीं था तब तो वहां से निकल के यहां आए हम, तो अब हम क्यों विकल्प खोजें? जो बाबा ने कहा है उसी ज्ञान से, उसी विधि से, उसी पद्धति से, उसी युक्ति से, उसी रीति से ही हर बात को मुझे पार करना। और बहुत रास्ते हैं दुनिया में, पर वो तो अज्ञानता के, मनमत के, विकारों के रास्ते हैं ना, वो तो हमें चाहिए नहीं। हमें तो बाबा के बताई हुई श्रीमत के आधार से ही परिस्थितियों को पार करना है। ये सब बातें बुद्धि में पक्की हैं और स्पष्ट हैं तो कभी हमारी स्थिति हम हिलाएंगे नहीं। क्योंकि मेरा ये निर्णय है, मुझ आत्मा का ये निर्णय है, प्राप्ति हो या नुकसान हो, देखने में जय हो या पराजय हो, हार हो या जीत हो, मुझे श्रीमत से ही हर बात को पार करना है। जबकि हार की बात ही नहीं है ना, बल देखने में लगेगा उस समय कि आपने गंवाया, हार हुई, पर एक्चुअली वो उस समय ही अपनी स्थिति को रखना है ना। देखो रोज जो ज्ञान योग हम पढ़ते हैं उसका उपयोग कब करना है, जब बातें आती है तभी तो उपयोग करना है ना। जब अनुकूल है, सहज है, तब तो हर कोई ठीक चलता है ना। जब सब बातें सहज हैं, अनुकूल है, तो हर कोई अपनी अवस्था अच्छी रखता है ना। तब तो कोई ज्ञान योग के उपयोग की बात ही नहीं है ना। इतना जो ज्ञान योग हम करते हैं उसका उपयोग करना कब होता है, जब बातें आती है। देखो नॉर्मली तो रूटीन ही चलता है ना, घर में या सेंटर में रूटीन कारोबार ही होता है ना। पर जब कभी कोई प्रसंग है, सेवा के प्रोग्राम है, तभी ही तो एक्स्ट्रा ओवर वर्क करना होता है ना। तो तभी तो स्थिति संभाल रही है, बाकी तो रोज रूटीन काम ही तो चलता है ना। वो तो कॉमन है, सहज है। जब एक्स्ट्रा ओवर वर्क करना होता है तभी हम प्यार से, शांति से, खुशी से करें, उसको ही तो ज्ञान कहेंगे। और बताइए ऐसा ओवर वर्क कितना दिन आता है, साल में कितनी बार आता है, कितनी बार आता है? मुश्किल से 30 बार भी नहीं आते। तो अवस्था तो इतना ही दिन संभाल दी है ना, बाकी तो सहज है ना, बाकी तो नॉर्मल है। स्थिति संभालने की बात तो सिर्फ इन दिनों में आती है। तो इतना सारा वर्ष किया हुआ ज्ञान और योग, ये 30-40 दिन जब बातें आती हैं ओवर वर्क की या कुछ भी, तो उस समय ही तो यूज करनी है ना। तो वो स्टॉक तो जमा है ना सबके पास, खजाना तो भरा हुआ है। तभी ही मुझे अपने आप को संभालना है कि अभी मुझे मेरे तरफ से कोई रिएक्शन नहीं जाना चाहिए। स्थिति बनाने का पुरुषार्थ तो रोज कर रहे हैं, परिस्थिति तो कभी कभी आती है। सारे कल्प में अवस्था बनाने का मौका तो अभी ही है ना, क्योंकि अभी ज्ञान मिलता है कि वास्तव में हम आत्माओं की स्थिति कैसी होनी चाहिए। हम भविष्य कौन सा बना रहे हैं, बाबा ने हमें कैसी दुनिया लाने के निमित्त बनाया है, हम सतयुगी दुनिया स्थापन कर रहे हैं, और वहां हमारी आत्मा स्थिति कैसी है, देवताओं की महिमा में क्या गाते हैं, हाँ है ना। तो सतयुगी दुनिया लाने के लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया, भविष्य हम ऐसा बनाना चाहते हैं, और उसके लिए हमें अभी स्थिति का निर्माण करना। जो रोज मुरली में बाबा वो महिमा गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न सुलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक है ना। जो भविष्य हम बनाना चाहते हैं खुद का और विश्व का, क्योंकि हम भगवान के साथ निमित्त बने हैं, तो जितना बाबा बेहद का कार्य करना चाहते हैं हम भी तो बाबा के साथ ही है ना। और ऐसी दुनिया लाने के लिए ये स्थिति बनानी, नेचुरल आत्मभिमानी। बाबा कहते हैं ना, सतयुग में तुम नेचुरल आत्मभिमानी हो, वहां पुरुषार्थ नहीं होगा, स्थिति होगी। पुरुषार्थ संगम युग में हम करते और अंत तक, संगम के अंत तक वो स्टेज हमें बना देनी है। और हम अनुभव भी करते हैं कि जैसे जैसे पुरुषार्थ करते जाते हैं देही अभिमानी बनने का, तो स्थिति भी तो बनती जा रही है ना, बन रही है ना, प्रोग्रेस तो हो रहा है ना, खुद महसूस करते हैं ना। और यही आत्मभिमानी स्थिति है जिसके फल स्वरूप हम न्यारे बनते हैं, रूहानी बनते हैं, साक्षी बनते हैं। तो नेचुरली व्यक्ति परिस्थिति का प्रभाव भी अब हमारे पर कम पड़ता है। अब हम मिसगाइड नहीं हो जाते कुछ गलत देख के, कोई गलत करता है कहता है तो हम भ्रमित नहीं होते, क्योंकि अब हमारा सद्विवेक मजबूत स्थिर बनने लगा। अक्सर लोग कहते हैं ना कि भी नॉर्मली मैं शांति से ही बात करता, प्यार से ही चलता हूं, पर उसने किया ऐसा ना जो गुस्सा आ गया। लोगों की मुसीबत तो यही है ना कि वैसे पर्स में दवाई रहती है पर बीमार पड़ता हूं तभी गुम हो जाती। पर हम बच्चे है ना नित्य पुरुषार्थी है, सत्य ज्ञानी है, हम परमात्मा योगी है। हमारा योग किससे है, तो हमारी पावर भी तो इतनी है ना। इसलिए हर हाल में, हर चाल में, हर देश में, हर वेश में हमें एक रस रहना है। जो बाबा ने सिखाया है वैसा हमें रहना है। ना मुझे और कोई स्थिति बनानी है, ना और कोई स्वरूप बनाना है। लोगों का तो देखते हो ना, घड़ी घड़ी मूड बदलता है, घड़ी घड़ी चेहरा बदलता है, घड़ी घड़ी व्यवहार बदलता है, क्योंकि उनका मन जो अपरिवर्तनशील है, परम सर्वोच्च है, उनसे नहीं जुड़ा है। उनके मन बुद्धि वहां अटैच है जहां सब परिवर्तनशील है। व्यक्ति बदलते हैं, वस्तुएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती, उनका योग वहां है ना। हमारा योग किससे है? जो सदा, बाबा भी कहते हैं ना, अंडरलाइन करो, सदा है ना, क्योंकि बाबा खुद सदा पावन है, सदा प्यार का सागर है, सदा मुक्त है, सदा कल्याणकारी है। तो उनकी याद से हमें भी कैसा बनना है? बाबा अव्यक्त मुरलियों में सन्मुख मिलन सबने मनाया है ना, अक्सर बाबा अंडरलाइन कराते रहे हैं कि सदा होनी चाहिए। कभी कभी तो बहुत सुंदर अनुभव हम करते ही है ना, और तभी तो हम पुरुषार्थ में लगे रहे हैं। हमने अनुभव किया है ना अच्छी अवस्था का, तभी तो हम पुरुषार्थी बने हैं। और वो पुरुषार्थ करते करते स्थिति हमारी एक रस, ऊंच, शक्तिशाली हमें बनानी, क्योंकि बताया ना हमें रिएक्टिव नहीं बनना है, रेस्पोंड करना है। नेचुरल आत्मभिमानी, क्योंकि अभी रोज हम वो पुरुषार्थ कर, और नेचुरल आत्मभिमानी होने के कारण ही वहां काल जीत है। बाबा कहते ना, काल जीत माना, हाँ, शरीर छोड़ने का कोई भय नहीं, मृत्यु का कोई एहसास नहीं, जन्म लेते, जीवन जीते, शरीर छोड़ते, बाबा कहते हैं वहां सुख अखंड रहता है, इसलिए तो अमर लोग कहते हैं। तो मृत्यु का कोई एहसास ही नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या, क्योंकि आत्मा तृप्त, भरपूर, संपन्न स्टेज में है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा करने का सवाल ही नहीं, प्राप्ति ही प्राप्ति है। और उसके लिए बाबा अभी हमें कहते हैं कि बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है। जितना हो सके उतना नहीं है ना, यथाशक्ति पुरुषार्थ करने की बात नहीं है। परसों की मुरली में ही बाबा ने क्या कहा, कैसा पुरुषार्थ करना है? 200 नाखूनों का जोर लगाकर, एड़ी चोटी एक करके, कहते हैं ना, पुरुषार्थ करना है। क्योंकि आप देखो मुरली में ब्रह्मा बाबा की लगन है ना, धुन दिखती है ना, कि पूरा वर्षा लेना, थोड़ी प्राप्ति में, थोड़ी स्थिति में खुश नहीं हो जाना। लौकिक में चाहे अलौकिक में, ज्ञानी आत्माओं के साथ चाहे अज्ञानियों के साथ, कहीं भी किसी से भी बात आए पर हमें चलित ना करें। क्योंकि यहां हम ज्ञान स्वरूप बन के चल रहे, भावना से नहीं चलते, सिर्फ भावना नहीं, हम ज्ञान स्वरूप बन के चल रहे हैं, हमारा आत्मा को समझ सकते हैं। भक्ति में तो भावना होती है ना, गुरुजी माना बस सब कुछ भगवान है ना, फिर गुरुजी कुछ गड़बड़ करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। यहां बाबा का एक एक बच्चा ज्ञानी तो आत्मा है, हरेक आत्मा जागृत है, हरेक का सद्विवेक जगा हुआ है, एक घड़ी मेरे से कोई भूल हो जाए तो भी आप भूल नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञानी आत्मा है। ये है ज्ञान की परिपक्व स्थिति। हम गलत नहीं सीखते हैं, ये करते हैं तो हम भी करें, वो चीज हमारे में नहीं आती है, क्योंकि हम हरेक ज्ञानी आत्माएं हैं। हम सब इंडिविजुअल डायरेक्ट बाबा से जुड़े हैं। आप मेरे कारण बाबा के नहीं बने, हरेक ने बाबा को परखा है, समझा है, और इसलिए हरेक खुद बने। इसलिए मेरे कर्म को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, कोई गलत करे तो भी मैं गलत नहीं करूंगी। ये है पावर, इसको कहते हैं शक्ति। हमारी लगन, हमारा उमंग, हमारा उत्साह बदलेगा नहीं, हमारी सेवा में, हमारे सहयोग में अंतर नहीं आएगा कि मुझे मान मिले, प्यार मिले, महिमा मिले तो मैं करूं, और ना मिले तो मैं बंद कर दूं। उसको ज्ञानी आत्मा नहीं कहते। हम किसी आत्मा को नहीं दे रहे ना, हम किसकी सेवा कर रहे हैं। हमारा यज्ञ है, हमारा बाबा है, हमारा कर्तव्य है। तो देखो, ज्ञान ये अवेयरनेस, ये शक्ति पावर देता है। ना बुद्धि बिगड़ती है, ना कर्म बिगड़ेगा, ना अवस्था बिगड़ेगी। क्योंकि मैंने खुद निर्णय किया है कि मुझे ज्ञान स्वरूप बनकर व्यवहार करना। कोई अच्छा व्यवहार करे और मैं भी अच्छा करूं, वो तो सामान्य बात हुई, वो तो सामान्य बात है। कोई कैसा भी व्यवहार करे, नंबर वार संस्कार अनुसार, पर मुझे अच्छा व्यवहार इसलिए करना है क्योंकि मैं अच्छी आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। ये है सेल्फ डिपेंडेंट स्टेज अवस्था। हम आधारित नहीं, भाई नए हैं, शुरुआत है तो हम आधारित होते हैं, पर हमें निमित्त आत्माओं के द्वारा, बाबा मम्मा दादियां सबके द्वारा है ना, इतनी पालना मिलती है, उसका रिजल्ट क्या हमें देना है? सेल्फ डिपेंडेंट, स्वनिर्भर रूहानी स्टेज हमें बनानी। ऐसे नहीं पालना लेते रहे और कमजोर भी रहे। यज्ञ में बाबा शुरुआत में हर प्रकार की पालना देते, बहुत अच्छी रीति खिलाना पिलाना रखना, ताकि कोई भी चीज के कारण बच्चों की बुद्धि लौकिक में न जाए, दुनिया में न जाए। तो बाबा क्यों खिलाते रहे पिलाते रहे पालना करते रहे? बाबा का ध्येय क्या था? कि बुद्धि लौकिक में बाहर दुनिया में न जाए। पर जिन्होंने ये राज नहीं समझा, वो खाते रहे पीते रहे और जब नहीं मिला तो चले गए, क्योंकि उन्होंने राज को समझा नहीं। हम समझते हैं ना बाबा के बच्चे, कि हमें पालना मिलती है, प्यार मिलता है, पढ़ाई मिलती है, साथ सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, मजबूत बन जाओ। अभी से हम मजबूत शक्तिशाली बन जाएं, अंत में परिस्थितियों के समय हम आपस में मिल ना सके तो हम अपनी ताकत से योगी जीवन जी सके। ये है शक्तिशाली स्थिति। बच्चा छोटा है तो माँ बाप अंगुली पकड़कर चलाते हैं, पर हर माता पिता का ध्येय क्या होता है? कि बच्चा जल्दी जल्दी अपने पैरों के बल चले। हमारा भी क्या निर्णय है? हम सबका भी निर्णय यही है ना, कि हम जल्दी जल्दी अपने पैरों के बल चलें, अपनी शक्ति से चलें, अपनी दृढ़ता से चलें। अब परिवार बड़ा हो गया है, सेवाएं बढ़ गई हैं, हमारे जो भी बड़े हैं वो बुजुर्ग हो गए हैं, आदि रत्न तो कितने एडवांस में चले गए। अब पालना न मिले तो हम फरियाद करेंगे, हलचल में आएंगे, या अब हम खुद ये लक्ष्य बनाएंगे कि हम मजबूत रहें और आने वाले नयों को हमें पालना देनी है। क्या करना है? हाँ, हमें अब वो करना है। तो जब अंदर से हम ठान लेते हैं और अपने आप को जल्दी छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब नहीं करना है, कहीं बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिस्टर्ब होते रहते क्योंकि आत्मा की स्टेज नाजुक है, शक्तिशाली नहीं। हमें किसी भी हालत में अवस्था बिगाड़नी ही नहीं, स्थिति गंवाकर हमें कुछ चाहिए नहीं, यह हमारा निर्णय होना चाहिए। स्थिति गंवाकर मुझे कुछ भी नहीं करना है, सेवा करनी है, संबंध में रहना है, पर स्थिति के साथ सब कुछ कर, तभी तो ज्ञानी कहे जाएंगे, तभी तो हम सेंसिबल कहे जाएंगे। और जब ऐसी स्थिति बना लेते हैं फिर हमें कोई बात परिस्थिति लगती ही नहीं। बाबा कहते हैं फिर आपको कुछ भी पेपर लगेगा ही नहीं, फिर हर बात कॉमन सीन लगेगी। आपको ऐसा महसूस होगा ही नहीं कि ड्रामा अपोजिट चल रहा है। कई कहते हैं पता नहीं मैं सोचती क्या हूं और होता क्या है, है ना? पर जब एक अवस्था बना लेते हैं फिर हमें कुछ विपरीत लगेगा ही नहीं। बाबा कहते हैं कोई पेपर नहीं लगेगा, हर बात कॉमन सीन लगेगी। और इसलिए जो बातें आती हैं, जो परिस्थिति आती है, जब हम उनको चाहते हैं, स्वीकार करते हैं, एक होता है ना भी मन से अपोजिशन करना, क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, ये बात क्यों आई, ये है अपोजिशन करना। और जो स्वस्थिति में स्थित होगा वो क्या करेगा, अपोजिशन नहीं करेगा। जो बात आई है उनको साक्षी होके ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करेगा साक्षी होकर, एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा, ठीक है बात आई है ना। तो जब हम अपने आप में शांत है, स्थिर है, यथार्थ है, तो हम परिस्थिति का निरीक्षण कर सकेंगे और हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, हमें कारण भी समझ में आ जाएगा और निवारण भी मिल जाएगा। हलचल में आते हैं तो न कारण समझ में आता है न निवारण दिखता है। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है, जो होता है उसको चाहते जाओ, धीरे धीरे अवस्था ऐसी बन जाएंगी आपको लगेगा जो मैं चाहता हूं वही हो रहा है, फिर आपकी अनुभूति ये होगी। अभी तो लगता है ना कभी बाबा ड्रामा फेवर में है कभी नहीं है, ऐसे कभी लगता है ना, कभी नसीब फेवर में है कभी नहीं है, ऐसे अनुभव होता है। पर ये पुरुषार्थ करते करते कि मुझे किसी भी कारण से स्थिति नहीं बिगाड़नी, जो बाबा की शिक्षाएं हैं चाहे मुरली में सुनी हैं, दादियों से अनुभव सुने हैं, वो बुद्धि में रख कर अपनी स्थिति में हमें स्थित रहना। धीरे 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 वो रिजल्ट आएगा कि बस जो चाहते हैं वो ही हो रहा है। फिर परिस्थिति भारी नहीं, मुश्किल नहीं, सहज हम आगे अपने आप को ले जाएंगे। एक रस जो बाबा कहते हैं ना, स्थित प्रज्ञ, कि मिला हुआ सद्विवेक किसी भी कारण से बदलना नहीं चाहिए। बाबा की सबसे बड़ी देन है दिव्य बुद्धि, और किसी भी परिस्थिति में मुझे वो बदलनी नहीं। बहुत जन्म मन्मत पर चले, परमत पर चले, रिजल्ट तो देख लिया ना, क्या रिजल्ट आया? उतरती कला हो गई, हीरो से क्या बन गए? जीरो हो गए। इसलिए अब नहीं चलना है, अब मनमत नहीं, परमत नहीं, कुछ नहीं, अब बाबा के श्रीमान। बन सकते हैं हम, स्थिति बना सकते हैं, और अंदर स्थिति बन जाएगी तो स्वरूप भी हमारा रूहानी, न्यारा, प्यारा, अव्यक्त, दिव्य अपने आप दूसरे भी अनुभव करेंगे, खुद भी अनुभव कर सकेंगे। बाबा कहते हैं ना, आप में बाप दिखाई दे, तो चेहरा तो यही रहेगा अंत तक, पर स्थिति बदल जाएगी, बाप समान बन जाएगी, तो साधारण नाम रूप से भी बाबा दिखाई देगा। तो हम इसी के पुरुषार्थी हैं, इसी अवेयरनेस में रहते हैं, और हमें ऐसी अवस्था बनाकर रहना है, है ना ऐसा? हाँ, कि हिलते दुलते रहना है, हाँ, एक रस होना है ना सबको। बाबा कहते हैं ना, लाइट बार बार आवे जावे अच्छा लगता है? नहीं, एक रस रहती है तो अच्छा लगता है। तो हम अपसेट होते रहे तो कैसे बात बनेगी, है ना? हम अंदर एक रस बनेंगे तो साक्षात्कार होने लगे। ओम शांति। कुछ अभ्यास हम करेंगे, 2 मिनट थोड़ा खड़े हो जाएं, हाथ पांव ठीक कर लें, कमर ठीक कर लीजिए, खड़े खड़े दौड़िए, स्पॉट रनिंग करिए, हाथ पांव स्ट्रेच करें, तीन अभ्यास खड़े खड़े करेंगे और फिर आगे बैठ के करेंगे। जिनको जब लगे बैठ जाना है तो आराम से बैठ जाना। पहला अभ्यास, रोज अंडरलाइन करें, बार बार मैं आत्मा अपने जीवन का केंद्र बिंदु हूं। शरीर सहित मेरे आसपास जो कुछ है वो हलचल है। मैं आत्मा अचल अडोल अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा शाश्वत सनातन हूँ। स्व में स्व की सत्यता में स्वयं की वास्तविकता में स्थित रहना ही स्वस्थिति बनाना है। राइट साइड घूम जाइए। दूसरा अभ्यास रोज रिवाइज करें। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मेरा योग डायरेक्ट सर्वशक्तिमान बाबा से है। हर क्षण हर स्थान साथ देने वाला मेरा अविनाशी साथी है। जहां मैं याद करूं वहां बाबा मेरे साथ है। अब मैं अकेली नहीं हूं। अब मैं बाबा से कंबाइंड हूं। राइट साइड घूम जाएं। तीसरा अभ्यास रोज पक्का करें। ड्रामा एक्यूरेट है। हर परिस्थिति में कल्याण है। मुझे कोई भी कारण से अटकना नहीं है, रुकना नहीं है। हर कदम आगे ही आगे बढ़ते जाना है। ड्रामा के हर सीन हमें सिखाने आती है। सबक सीखना है, परिपक्व बनते जाना है। चौथा अभ्यास, हम निमित्त हैं, श्रेष्ठ सतो प्रधान सुखमय संसार स्थापन कर। जहां सदा सत्यता है, पवित्रता है, दिव्यता है। हम ऐसी दुनिया निर्माण करने के निमित्त हैं। संगम युग की मेरी आत्मा स्थिति सतयुगी देवताई स्थिति की आधारशिला है। संगम का समय बाबा का हाथ और साथ मेरा पुरुषार्थ मुझे मजबूत एक रस बना रहा है। साइड साइड घूम जाए। पांचवा अटेंशन, बाबा के संग हम ब्राह्मण आत्माएं भी आधार मुहूर्त उद्धार मुहूर्त उदाहरण मुहूर्त है। बाबा के खातिर विश्व के खातिर स्वयं के खातिर मुझे अपनी श्रेष्ठ आत्मस्थिति एक रस शक्तिशाली श्रेष्ठ बनानी है। बैठ जाए। नुमा शाम की संध्या के इस पावन पल में बेहद सेवा के लिए मुझे निमित्त बनना है। अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाप दादा के संग विश्व की आत्माओं के प्रति मनसा मदद करनी है।